ओम शांति। आदरणीय राजू भाई जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। राजू भाई जी सभी के बहुत स्नेही सहयोगी हैं, निमित निर्माण नम्रचित हैं, अथक सेवाधारी हैं। हम उनकी सेवाओं को सभी जानते हैं। आपका विषय है ज्ञान योग के फाउंडेशन को मजबूत कैसे बनाएं। शिव बाबा हमारा परम शिक्षक है, स्वयं भगवान से हम पढ़ते हैं, वो ज्ञान के सागर हैं, ज्ञान रत्नों से रोज हमारा श्रृंगार करते हैं। तो हम सुनते तो हैं, लेकिन वो ज्ञान कितना समाया है। हम ज्ञान में चलते हैं, लेकिन ज्ञान हम में कितना है। और योग तो कर्मेंद्रियों को शीतल बनाता है, हमारे विकर्म विनाश करता है, आत्मा को पावन बनाता है। तो ज्ञान योग के इस फाउंडेशन को मजबूत करने से ही ब्राह्मण जीवन का ये जो भवन है वो टिका रह सकता है। तो हम सुनेंगे भाई जी से कैसे उसे मजबूत बनाए रखें।
ओम शांति, ओम शांति। आप सभी ने योग भट्टी में पहला टर्न लिया है, बहुत खुशी की बात है। उमंग और उत्साह तो सभी में अच्छा है ही, तब तो सबने समय निकाला है। सेवाएं तो हर एक के पास बहुत हैं, अनेक प्रकार की अपनी अपनी सेवाओं में सब व्यस्त हैं, लेकिन तपस्या के लिए विशेष अपने ज्ञान और योग के फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए ये तपस्या भट्टी जिसमें आप सबने समय दिया है, मैं समझता हूँ सभी बाबा की मुरली तो रोज प्यार से सुनते हैं, कोई क्लास में सुनते हैं, कोई माइक पर सुनते हैं, कोई अपने अपने मोबाइल से सुनते और पढ़ते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा बाबा का बच्चा नहीं है जो बाबा की मुरली को न सुनता हो न पढ़ता हो। ऐसा है क्या कोई? हमारी जीवन ही ये है। सेवाएं तो निमित्त मात्र बाबा ने हमारा भाग्य बनाने के लिए, हमें बिजी रखने के लिए दिया है, लेकिन पहला फाउंडेशन जिससे हम सबको श्रेष्ठ श्रेष्ठ स्थिति बनानी है और साथ साथ भविष्य पद का भी जो आधार है वो ज्ञान और योग है। मैं जब मधुबन में शुरू शुरू में आया था, मुझे ज्ञान योग में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इंटरेस्ट भी नहीं था, इसका रस भी नहीं बैठा था, और साथ साथ सेवाओं में ही समर्पित हो गए। सेवाओं के कारण हमको चांस मिला मधुबन में रहने का, और सभी प्रकार की स्थूल सेवाएं ही थी। ज्ञान योग के क्लास तो केवल दो ही होते थे, एक सवेरे की मुरली होती थी और रात का एक 9 से 10 वाला समाचारों का क्लास होता था। अमृत वेले का योग और नमाज शाम का योग भी चलता था, ये बस इतना ही था, इसके बीच में कोई क्लासेज नहीं थी। सेवाएं इतनी थी कि योग के समय मुरली के समय ही मेरी सेवाएं थी। जब अमृत वेले का योग शुरू होता था तो हमारी सबसे बड़ी सेवा थी सबके कमरों में गर्म पानी की बाल्टियां पहुंचाना। एक जगह पर पानी गर्म करते थे, क्योंकि बॉयलर तो थे नहीं, सिस्टम नहीं था रनिंग वाटर का। ठंडे पानी का नल कमरों के आगे लगा हुआ था, बाथरूम में किसी के नहीं था, ठंडे पानी का नल तो पहुंचा था लेकिन गर्म पानी नहीं था, और ठंडी तो आबू की जानते थे बहुत होती थी उस समय, तो अभी बहुत कम है। तो सवेरे 2-2:30 बजे मैं उठ करके पानी की टंकी गर्म करता था, एक लकड़ी से ही, चूल्हे से ही, और फिर 4 बजे 2-3 भाइयों को उठा के लाता था। और 3-4 भाई सब बहनों के कमरे में, खास तो बहनों के कमरे, भाई तो लोग अपने अपने ले भी जाते थे बाल्टी, लेकिन कोई VIP होते थे, बड़े भाई होते थे तो उनको देना पड़ता था। लेकिन मोस्टली बहनों के कमरों में कोई कहता था, भाई जी मुझे बाल धोना है, कपड़ा धोना है, 2 बाल्टी चाहिए, 3 बाल्टी चाहिए। तो सवेरे योग चलता था और हमारी सबकी लेफ्ट राइट होती थी। पुराने तो जानते हैं, जो मधुबन में पहले पहले आए हैं उनको पता है, 10-11 साल तक ये सब स्थूल सेवाएं मधुबन में करने का ही यही था सेवा। एक तरफ हम लोग सवेरे पानी पहुंचाते थे, फिर जब नहा धो के तैयार हो के हम आते थे तो मुरली क्लास के समय हमारा धोबी घाट होता था। दादी कहती थी धोबी घाट तो ऐसे समय पर ही करना पड़े जब आवाज नहीं हो, क्योंकि धोबी घाट पाटा से होता था ना, ऐसे छटका लगाते थे तो उसमें बहुत आवाज होती है। तो मुरली के समय हम लोग अपना धोबी घाट करते थे। तो ऐसे मुरली भी मिस हो रही है, योग भी मिस हो रहा है। तो दीदी ने एक दिन बुलाया कि तुम लोग यहाँ समर्पित किस लिए हुए हो? सेवा करने के लिए? सेवा तो नौकर भी कर सकते हैं, मजदूर भी रखे जा सकते हैं, लेकिन आप तो सभी बाबा के बच्चे, भले मुरली और क्लास के समय, योग के समय आपकी सेवाएं हैं वो छोड़ो नहीं, लेकिन इसके बाद विशेष इस पर ध्यान दो। मुरली जरूर पढ़ना है, मुरली को अच्छी तरह से स्टडी करो। और योग के लिए भी कहती थी, जब समय मिलता है एकांत में चले जाओ, अच्छी तरह से योग करो। और शाम के समय तो जब बैठती योग कराती थी तो सबकी हाजिरी होती थी कि कौन कौन बैठा है। एक दिन मुझे बुलाया कि एक बात कहूं, ध्यान देना संघ की संभाल करना। दीदी मनमोहिनी बड़े प्यार से बोलती है, संघ की संभाल करना। मैंने कहा, दीदी संघ तो बाहर वालों का खराब है, मधुबन वालों का संघ क्या खराब है, यहां क्या संभालना है? तो कहती है, यहां भी ऐसे भाई ऐसी बहनें यहां हैं जिनका अपने पढ़ाई पर, अपने ज्ञान योग पर ध्यान नहीं है, जो केवल सेवा करते हैं, खाना खाते हैं, कपड़े लेते हैं, लेकिन अपनी उन्नति के लिए कोई भी समय नहीं निकालते। कभी बैठ जाएंगे तो पर चिंतन, पर दर्शन, इसकी उसकी बातें करेंगे। इसलिए ध्यान देना कि अगर अपनी उन्नति करनी है तो ज्ञान और योग करने वालों का संग करना। अगर ऐसे संग करोगे तो बच जाओगे, नहीं तो यहां पर भी संग का रंग बहुत जल्दी लगता है। मैंने बहुत इस बात पर ध्यान दिया, और जब इस पर अटेंशन दिया तो दीदी ने नए आने वालों को मेरे संग कर दिया। कोई भी नया आता था, इसको तुम देखना, इसको तुम गाइड करना, इसको तुम सेवाएं देना। तो नए जो समर्पित होते थे आकर के, उनको फिर मेरे को दे देती थी, इनको आप संग का रंग लगाओ, कोई दूसरे संग में न जले जाए। बहुत ध्यान रखते थे क्योंकि छोटा परिवार था, फाउंडेशन था उस समय, फाउंडेशन को पक्का करना था। आज तो कोई पूछे या न पूछे, कितने लोग अमृत वेला करते हैं, कितने लोग मुरली क्लास करते हैं, कोई पूछने वाला है? कोई नहीं पूछता है। दादियों का तो ध्यान ऐसा था, शायद आप लोगों ने सुना हो, कि जब अमृत वेले योग दीदी कराना शुरू किया, क्योंकि बाबा का डायरेक्शन आया कि जो बड़े हैं वही योग कराएंगे, तो दीदी ने कहा मैं कराऊंगी। तो दीदी ने जब योग कराना शुरू किया तो दीदी की नजर जाती थी संगठन के बीच में, कौन कौन योग में है, कौन बीच में उठा, कौन नहीं आया, सब बातों का नोट होता था। तो एक दिन मेरी दादी प्रकाश मणि जी को कहा दीदी ने कि बहुत सारे पांडव जो है ना, बहुत सारे गोप बोलती थी भाइयों को, ये बहुत सारे गोप है ना मुरली योग में नहीं दिखाई देते हैं, दादी आप एक बार चेक करो कहाँ रहते हैं, क्यों नहीं आते हैं या क्या करते हैं ऐसे समय पर। तो दादी और मोहिनी बहन सवेरे सवेरे उठ गई कमरे से योग से, और हम लोग 5-7 मिनट पहले ही उठे थे, गए थे योग में उस दिन, लेकिन जब गीत बजने लगता ना तो हम पहले उठ जाते थे। तो हम सब उठ करके 3-4 भाई चले गए थे, लाइट हाउस बन गया था उस समय पांडव भवन में, और लाइट हाउस में हम 25 भाई रहते थे, 5-5 एक एक कमरे में थे। तो मोहिनी बहन और दादी थोड़ा सा पल्ला निकाला घूंघट, कोई पहचान ना सके, सिक्वेंस जैसे सीढ़ी आता ना ऐसे, और दोनों ने घूंघट निकाला और सीढ़ी पर हम लोग उधर ब्रश कर रहे थे, सोए तो नहीं थे, 2-3 भाई उठ के जो गए थे वाश बेसन पर खड़े थे, उधर बाहर ही थे सबका, बाथरूम में तो कुछ था नहीं साधन। तो ये जब दोनों चढ़ने लगी तो हम, रामसलोक भाई था, हम थे और 2-3 भाई थे, बड़ी जोर से चिल्लाए, ये माताएं ये भाइयों के एरिया में तुम क्यों आ रही हो, हमको क्या पता ये दादी खुद आ रही है। जब बड़ी जोर से थोड़ा आवाज दिया ऊपर से तो दादी थोड़ा सा ऐसे करके पल्ला हटा के ऐसे चुप, बोलना नहीं कोई, आ गई ऊपर। मोहिनी बहन और दादी दोनों आ गई ऊपर, कहती इधर आओ मेरे साथ, सब कमरों में चलो, 5 कमरे थे, एक एक कमरे में गई, कहती है कोई उठाना नहीं, कोई को जगाना नहीं, लेकिन जो सोए हुए उनका नाम नोट करो। 5-6 कमरों का चक्कर लगाया, करीब 5-7 ही सोए होंगे, कुछ जगे हुए थे कुछ क्या था। तो ऐसे एक कमरे से दूसरे, दूसरे से होते, एक सीढ़ी से चढ़ी थी, दूसरी सीढ़ी से नीचे उतर गई। अब इसके बीच में इतना तो चर्चा तो हो ही गई, दादी आई तो सब सोए हुए भी उठ गए, और उठना तो ठीक था लेकिन अंदर अंदर बहुत डर, पता नहीं अभी क्या होगा, कैसी पेशी होगी। फिर जब चले गए तो चिटकी लेके चली गई, कौन कौन सोए थे, कौन कौन क्लास से योग से उठ करके आए थे, सबका नाम नोट कराया। और जब सब नाश्ता खाना पूरा हो गया, दो सुबह का नाश्ते वगैरह का 9 बजा शरीफ, तो दीदी की एक आदत थी कि दीदी के पास अगर चिटकी जाती थी ना तो कोई भी प्रकार की कंप्लेंट किसी की गई तो दीदी ने अपने पास वो चिटकी मंगाई, और घंटी थी दीदी ऐसे घंटी बजाती थी, और घंटी बजा के पहरे पर जो भाई था उसको बुलाती थी, इधर आओ, उस भाई को कहती थी इस भाई को बुला लाओ, इस भाई को बुला लाओ, उसको लिस्ट दे दिया कि इनको बुलाओ हाजिर करो। अब जब वो पहरे वाला हम लोगों के कमरे में, या जिन जो नहीं गए सोए हुए थे या पहले आ गए थे, उनका नंबर आया, और जब जाते थे तो पहले तो सब पता तो चल गया था कि कुछ तो डांट लगेगी, कुछ सजा मिलेगी, लेकिन बहुत प्यार से बाजू में बिठा के, तबीयत ठीक रहती है, एक्सरसाइज करते हो, नकेले घूमने जाते हो, नाश्ता किया है, 3-4 प्रश्न पूछ करके फिर कहती थी अच्छा घूम करके भी आए, नाश्ता भी किया, अमृत वेला क्यों नहीं आते हो, क्या है कारण बताओ। उस समय नींद आती है, तो ऐसे बहुत प्यार से समझा करके, और फिर कहती थी देखो अगर समर्पित जीवन का लाभ लेना है, उन्नति करनी है, तो बाबा ने हमारे लिए केवल यही 2 बातें तो कही है, और तो कुछ कहा ही नहीं है पुरुषार्थ के लिए, ज्ञान और योग, धारणाएं और सेवा तो लास्ट के दूसरी सब्जेक्ट हैं, ज्ञान और योग। अगर आप लोग अमृत वेला योग नहीं कर रहे हो, मुरली क्लास नहीं कर रहे हो, तो कब उन्नति करोगे, यही तो फाउंडेशन है। हम सबका इतना ध्यान एक एक बात के लिए, दीदी खास करके क्लास नहीं कराती थी, दीदी ने कभी क्लास नहीं कराया माइक पर, लेकिन पर्सनल ये पालना देती थी, एक एक पर नजर रखती थी, कहाँ घूमते हैं, किसके साथ बैठते हैं, क्या खाते हैं। एक बार किसी ने, क्योंकि बेगरी पार्ट था ना, किसी ने केला खाया था, बाजार से लाया होगा, कोई पैसा होगा किसी के पास, और छिलका केले का डस्टबिन में पड़ा था, तो सफाई कराने वाली बहन, बहन थी, बहनें सफाई कराती थी, भाई मजदूरों से या जमादार से, वो चक्कर लगाते हुए देख लिया कि इस डस्टबिन में केला के छिलके पड़े हैं, वो छिलके उठा करके दीदी के पास ले गए। दीदी ये गोप जो है ना, ये भाई लोग छिप छिप करके फल खाते हैं बाजार से मंगा करके, ऐसी हो गई सबकी, बुलावा हुआ, कहो किसके पास पैसा है बताओ, किसके किसके पास है, कितना रखा है, क्यों रखा है, किस लिए पैसा अपने पास रखा है, समर्पित की क्या निशानियां होती हैं। बहुत प्यार से सिखाना, किस लिए, किस कुछ चाहिए तो दीदी को बताओ ना। एक बार क्या हुआ, हम लोगों ने, ये हमारे बाल सबके झड़ते थे, कहानियां सुनाता हूँ आपको, ज्ञान योग की फाउंडेशन तो बताऊंगा ही। तो दादी कहीं टूर पर गई थी, दादी से सब बहुत डरते थे क्योंकि दादी क्लास करा देती थी, तो दादी टूर पर गई थी और दीदी तो अकेले थी, तो 15-20 भाइयों ने मुंडन करा दिया। अब 15-20 अगर मान लो 50 में से 15-20 लोग मुंडन करा दें, तो बाजार में भी तो चर्चा हो गई ना, कोई इनका दीक्षांत समारोह होगा, इन लोगों ने क्यों मुंडन कराया है। और दीदी को बहुत खराब लगा, लेकिन बोली कुछ नहीं कि आने दो दादी को, फिर बताऊंगी इनको। तो मुंडन कराया हुआ था सबने, तो दीदी बहुत रमणीक थी, तो जब दादी आने लगी पांडव भवन में, जब आने का टाइम हुआ, तो दीदी ने हमारे 2-3 भाइयों को तो सन्यासी की ड्रेस पहनाई, बनवाया खास कुर्ता लंबा लंबा, और उनको बोला तुम फुल सन्यासी के ड्रेस में आना, चंदन नंदन लगा के ये करके ऐसा, तो 2-3 को तो सन्यासी की ड्रेस बना दिया, और बाकी सबको जो एक लाइन होती ना बीच में पट्टी होती थी, अभी तो पट्टी का सिस्टम नहीं है, एक तरफ बहने एक तरफ भाई और बीच में पट्टी होती, तो उस पट्टी पर सब जितने गंजे थे, जिन्होंने बाल घुटाए थे, उन सबको लाइन में बिठा दिया, सब एक ही लाइन में बैठेंगे। अब हम सब बैठ गए, अब दादी अंदर घुसी और सन्यासियों ने स्वागत किया, तो दादी को लगा कोई आए होंगे, मेहमान होंगे, सन्यासी आए होंगे, दादी पहचानी भी नहीं, गुलदस्ता लिया और साथ उन सन्यासियों के साथ दादी अंदर घुस गई। और जब दादी ऐसे बैठी गद्दी पर, कुर्सियां तो थी नहीं, और सब लाइन में देखा है, सब गंजे बैठे हैं, बस क्या हंसने लगी, पहले तो इतनी हंसी किया, बोलना तो दूर, योग कराना तो दूर, खूब हंसने लगी खिलखिला करके। फिर कहती ये सब क्या बना के रखा है, किसकी छुट्टी से किया है तुम लोगों ने, अब क्लास शुरू हो गया, किसकी छुट्टी से, कब कहा है कि दादी ने कि सबको मुंडन कराना, किस लिए कराया है। तो एक दो ने भी दलील दिया, जैसे यहाँ कहते हैं ना, पूछो भाई आपने क्यों कराया है, तो कहेंगे बाल झड़ते थे, ये झड़ता था, वो झड़ता, कई काट बातें बताएंगे। कहती थी ये श्रीमत है, दीदी कहती है अगर ये मेरे को बताते ना मेरे बाल झड़ते हैं, तो मैं इनको बादाम का तेल देती, बादाम का तेल लगाएंगे ना तो बाल नहीं झड़ेंगे। बिना बताए जा करके दादी इन्होंने मुंडन करवा लिया, और कितनी बदनामी करा दी इन्होंने संस्था की, कोई दीक्षांत समारोह है, कुछ हुआ है इनके यहाँ, या तो कोई शरीर छोड़ दिया है। ऐसे ऐसे फिर शिक्षाएं मिली हम लोगों को, एक भी कोई कर्म समर्पित भाई बहने मन मत से नहीं कर सकते। यहां तक एक हमारा भाई था, कोई कोई है अभी भी, यहां भी है एक दो, ज्यादा नहीं है अभी, तो मूछ रखता था बड़ी बड़ी, और जब देखो तो मूछ पर ऐसे हाथ फिर जाता है ना, अचानक ऐसे ऐसे चला जाता है, और दादी जी का बड़ा ध्यान जाता था, यह अहंकार की निशानी है। तो एक दिन ऐसे ही क्लास में बोलती है कि एक बात मैं पूछना चाहती हूँ भाइयों से कि देवताओं में और असुरों में अंतर क्या है। तो सबने अपनी अपनी दलीलें दिया, अपनी अपनी बातें सुनाएंगे ना। तो किसी ने कहा कि देवताओं को दाढ़ी मूछ नहीं होती और जो असुर हैं उनके बड़े बड़े मूछें होती हैं। दादी ने कहा तुम लोग देवता बनने वाले बाबा के बच्चे ये मूछे क्यों रखाते हो, किस लिए रखा है, ये रावण की निशानी है। और इतना क्लास उस पर कराया तो दूसरे दिन सब जो भी थे थोड़ी बहुत भी छोटी भी मूछे थी सब निकाल के आ गए। दादी कहती तुम लोगों ने मुठ्ठों ने ये क्या किया, मैंने तुमको थोड़ी बोला था, वो एक भाई जो है ना ऐसे ऐसे करता रहा उसके लिए क्लास कराया था। तो ऐसी पालना हम लोगों को दादियों की मिली है, एक एक चीज उठना बैठना सोना। हम तो 15-16 साल की उम्र में समर्पित हुए हैं ना, आप लोग तो बड़ी उम्र में आए हैं, बाहर दुनिया देख के आए हैं और स्नेह से जन्म लिया। ज्ञान योग तो बाद में पक्का किया, लेकिन ज्ञान योग का फाउंडेशन पक्का हो जाए उसके लिए उन्होंने बड़ी विधियां रची। एक एक को बहुत अच्छी ढंग से मुरली सुनने का एक तरीका सिखाया कि फाउंडेशन कैसे मजबूत। ऊपर से सुन लिया चले गए, काम पूरा हो गया। कहती थी इधर आओ मेरे पास, डायरी के 4 भाग करो, 4 भाग करके एक भाग में ज्ञान की पॉइंट लिखना। मुरली से साकार बाबा की मुरली में 4 सब्जेक्ट होती हैं, ज्ञान की पॉइंट्स लिखो, योग की पॉइंट लिखो, धारणा के लिखो, सेवा के लिखो, 4 भाग एक डायरी के बनाओ। और मुझे पूरे 7 दिन की पॉइंट मैं तो टाइप करने लगा था, जिनकी टाइप की अच्छी पॉइंट्स होंगी सबकी मुरलियां लेकर के सबकी टाइप करके लाओ। ज्ञान की गहराई को समझने का जो मुझे अवसर मिला वो था उस समय की पढ़ाई। एक एक मुरली को पहले सुनते थे बाद में पढ़ते थे, मुझे तो टाइप भी करनी पड़ती थी, लेकिन उसमें से 4 सब्जेक्ट की पॉइंट निकालना, ज्ञान की सब्जेक्ट कितनी गहरी है। और उस समय की क्लासेज के अंदर एक टॉपिक चलाई जो हमारी वर्कशॉप होती थी कि हर पॉइंट से, ज्ञान की पॉइंट से लाइट क्या मिलती है और माइट क्या मिलती है। अगर आत्मा का ज्ञान आपके पास है तो एक लाइट है, रोशनी है कि मैं एक आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। इस लाइट से, इस रोशनी से माइट क्या मिली, माना शक्ति क्या आई आपके जीवन के अंदर। एक बात नहीं, ज्ञान की हर पॉइंट में लिखो कि ये लाइट है इसकी, ये माइट है इसकी। अब उस पर चिंतन करेंगे अगर तो आप गहराई का अनुभव कर सकेंगे। मान लो मुझे आत्मा का ज्ञान है, वो लाइट मुझे बाबा ने दी है कि आप एक आत्मा है, शरीर नहीं है। सबसे बड़ी माइट ये मिलती है जो धर्म भेद, जाति भेद, भाषा भेद, भेद आ गए हैं, प्रांत भेद आ गए हैं। कोई कहेंगे यहाँ पर तो सब मराठियों का राज्य है, कोई कहेंगे ये फलाने का है, कोई कहेंगे ये है, बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं। उसका कारण है उन्होंने आत्मा का पाठ पढ़ा है लेकिन आत्मा की पॉइंट से उन्होंने शक्ति नहीं ली है। अगर शक्ति हमारे जीवन के अंदर है, आत्मा के पॉइंट का फुल ज्ञान है, समझ है, और उसके साथ साथ उसकी शक्ति जीवन में आई है, तो जो हमारे भेद है ना वो सब खत्म हो जाएंगे। हम एक बाबा के बच्चे परम धाम घर से इस सृष्टि मंच पर आए, कहीं पर किसका जन्म हुआ, कहीं पर दीदी कहती थी भिन्न भिन्न जंगल की काठियां इकट्ठी हुई हैं, इधर की काठी, इधर की काठी, काठी माना लकड़ी, हर जंगल की लकड़ी इकट्ठी हो जाएगी तो वैरायटी तो होगी ही, एक जैसी तो नहीं होगी, जंगल अलग अलग है। ये सारा संगठन भिन्न भिन्न प्रांत का है, भिन्न भिन्न भाषाओं वाला है, भिन्न भिन्न जाति वाला है, लौकिक में भिन्नताएं तो रहेंगी, लेकिन जब तुम ब्राह्मण कुल भूषण बन गए, एक ब्रह्मा की संतान, ब्रह्मा मुखवंशा बन गए, मुखवंशावली कहलाते हो, तो तुम्हारे अंदर ये भान क्यों आता है कि मैं ब्राह्मण हूं, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, या इस जाति का है या यहाँ का है, ये पंजाबी है, ये मराठी है, ये गुजराती, ये भाषा क्यों मैं सुनती हूँ? ये भाषा अगर है तो माना आपने आत्मा के ज्ञान को समझा ही नहीं है। इसको थोड़ा सा और गहराई से आप सब विचार करना। हम लोगों को 20 साल तक किसी ने ये नहीं पूछा तुम्हारा सरनेम क्या है। सबका सरनेम बीके है, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी है। जब राशन कार्ड बने, आधार कार्ड, अभी तो आधार कार्ड बने, उसमें राशन कार्ड बने या कोई भी कार्ड बने, उसमें लोगों ने सरनेम पूछना शुरू किया, तो दीदी ने पता क्या किया, कहा कोई नहीं बताना अपना सरनेम, क्यों बताना, सब लोग बीके राजू अपना नाम लिखो और लिखो प्रजापिता ब्रह्मा, सन ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा। हम लोग कम से कम मधुबन निवासियों के 100 या 150 ऐसे ही कार्ड बने जिसमें हमारा नाम बीके राजू और पिता का नाम प्रजापिता ब्रह्मा। अभी कैंसिल किया, उस समय की बात कर रहा हूं, सुनो तो पहले, अभी तो चेंज करना ही पड़ा ना, सरकार के नियम बदले, सरकार के नियम बदले, नियम के अनुसार चलना पड़ता है। लेकिन उस समय किसी के भी कार्ड, जो भी मधुबन निवासी थे, उन सब के लौकिक फादर की जगह पर प्रजापिता ब्रह्मा ही था, और बहुत दिन तक ये चलाते रहे। जब ये टैक्स की बात आई, जब ये सरकार के और कायदे निकले, तब वो चेकिंग हुई कार्ड की, नहीं तो कितने दिन तक राशन कार्ड, अभी तक भी फ्लाइट में मेरा वही कार्ड चलता है, वही कार्ड दिखाता हूँ, उसी से जाता आता हूँ। लेकिन ये सब नियम बनाए गए बाद में, गवर्नमेंट के कायदे बने, क्योंकि इसके अंदर दूसरे देश के लोग, दूसरे प्रांतों के लोग घुसने लगे भारत के अंदर, तो कुछ तो सेफ्टी के लिए कुछ कायदे बनाए गए और उस कायदे के अनुसार चलना पड़ता है। अब हम लोग अपना कोई भी पासपोर्ट बनाया तो ऐसा थोड़ी हम लौकिक पिता का नाम प्रजापिता लिखेंगे, उसमें तो सरनेम देना पड़ेगा, लौकिक बाप का नाम देना पड़ेगा। लेकिन अगर आत्मा का ज्ञान पक्का है, अगर हमने इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, तो जो आंतरिक भावनाएं हैं उसमें तो हमारे भेद नहीं दिखाई देने चाहिए, वो भेद खत्म करना है, तब कहेंगे आत्मा के ज्ञान की शक्ति, माइट हमारे अंदर है। ड्रामा का ज्ञान बाबा ने इतना विचित्र ढंग से दिया है और इतना सुंदर ये ज्ञान है, अगर किसी के पास बहुत स्पष्ट है, कभी भी उसके मन में किसी भी दृश्य को देख करके हलचल नहीं हो सकती, क्वेश्चन नहीं उठ सकते। अगर क्वेश्चन उठते हैं तो बाबा कहता है तुम अपने डायरेक्टर पर, इसका जो क्रिएटर है, डायरेक्टर है, उसके ऊपर शक कर रहे हो, कुछ न कुछ उसमें रहस्य है, कुछ न कुछ उसमें कल्याण समाया हुआ है, छिपा हुआ है, अगर सामने दिखाई देता है इसमें क्या कल्याण है, प्रश्न करते हैं लोग, ऐसी सीन हुई, ऐसा नुकसान हुआ, ऐसा हो गया, आप कहते इसमें कल्याण है, क्या इसमें कल्याण है? बाबा कहते हैं बच्चे तुम अपनी बुद्धि को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, ये ड्रामा कल्याणकारी इसलिए है, कई बातें हैं जो आपको अनुभवी बना करके जाती हैं, अनुभव बढ़ा रही हैं। अगर आप उस बेहद दृष्टि से, त्रिकालदर्शी दृष्टि से इस नाटक को देखोगे तो कभी भी हलचल में नहीं आओगे, उलझन में नहीं आओगे। इसलिए जो ज्ञान की गहराई है उसको यथार्थ समझ करके चलो। ऐसा हो रहा है, यज्ञ में ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कई लोग कितना अंदर अंदर उलझते हैं, दूसरों को उलझा देते हैं, सुनाएंगे ये हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हो, आप बड़े बैठे हो फिर भी ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। लेकिन हमारी दादियों ने कभी अपने आप को हलचल में लाया? उनको नहीं पता था ऐसा हो रहा है। एक बार दादी को, बड़ी दादी को, जानकी दादी ने कहा, दादी इतनी सारी मधुबन की कंप्लेन आपके पास नहीं आती है, मेरे को आती हूं तो सुनाते हैं लोग। तो दादी कहती है जनक 90% अगर ठीक चल रहा है और 10% कंप्लेन आ रही हैं, तो आप 10% को क्यों हाईलाइट कर रही हो, 90% को क्यों नहीं हाईलाइट करती हो? इतना बड़ा संगठन है, इतना बड़ा परिवार है, वैरायटी है, सुधारने का प्रयास किया जाता है, बाबा उसको हर प्रकार की शिक्षाएं दे रहा है, हम ला नहीं ले सकते किसी के आगे। कभी कभी मैं आपको बताता हूं, हमारे बड़े जो थे, चार पांच भाई मधुबन के बड़े भाई थे जो कराची से ही साथ में आए यज्ञ में, उनकी कई जवाबदारियां थी। और जब हम लोगों का संगठन आया तो कई प्रकार के डिमांड थी, डिमांड होती थी नेचुरल। हमारा ऑफिस बन रहा है तो हम ये कहेंगे हमारे में ऑफिस में टाइल्स लगा दो, हमारे पास सनमाइका लगा दो, ये कर दो। लेकिन वो दादाओं के हाथ में चार्ज थी और वो बहुत इकोनॉमी वाले थे, बहुत इकोनॉमी थे, तो ये नहीं पैसे ही नहीं थे घर में, वो बिगड़ जाते थे, गुस्से में आ जाते थे, कभी कुछ बोल देते थे। थोड़ी देर के बाद नॉर्मल होके फिर सॉरी भी करेंगे, एक बार तो जरूर डांट देंगे आके, फिर कहेंगे देखो तुमको अगर मैं करके दूं तो ये सारा घर इतने लोगों का करना पड़ेगा, इसलिए जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे, इसलिए इकोनॉमी से बाबा ने चलना सिखाया है, प्यार से समझाते थे। लेकिन कभी अगर उनकी कंप्लेन लेकर के हम दादी के पास गए तो दादी पता क्या कहते थे, दादी बहुत बड़ी दिल वाली थी, बहुत फ्राक दिल थी, हमेशा चिट्ठी लिख देती थी इसका काम ये कर दो, इसको जरूरत है, लेकिन फिर भी कहती थी देखो मैं काम तो करा दूंगी लेकिन मैं उसका सामना नहीं करूंगी बड़े का, वो भी मेरे जैसे हैं, वो भी यज्ञ के जवाबदार हैं, मैं उसको कोई शिक्षा नहीं दे सकती हूं, आपने कंप्लेन की है, मैं उसको सेल्वेशन दे रही हूं लेकिन उनको मैं सिखाऊं, उनको मैं कहूं, मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि मेरे समान है, हम जिन्स हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं कि मैंने ये लेटर लिख के दिया है, मैंने ये कंप्लेन की है, बड़ों को इसको सुधारना चाहिए, इसको बोलना चाहिए, कई ऐसे कारण होते हैं जो लोग नहीं बोल सकते हैं। हम सबको अपनी स्थिति को कभी भी डगमग नहीं हो, इसके लिए ज्ञान और योग का फाउंडेशन चाहिए। अगर योग का फाउंडेशन है, पक्का किया है, अच्छी तरह से बाबा से प्यार भरा संबंध है, योग कोई हमारा ये नहीं है कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं बस ऐसे बैठ गए एक घंटा दो घंटा, हमारी योगी लाइफ है, योगी जीवन है, और इस योगी जीवन में हमारा चलना उठना बैठना खाना पीना बात करना, अगर उसमें रूहानियत नहीं है तो योगी जीवन कैसे है? अगर हम उसी तरह से लौकिक जीवन की तरह, लौकिक लोगों की तरह हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, चलते चलते बात कर रहे हैं, वास्तव में योगी जीवन नहीं है। योगी माना न्यारा प्यारा, योगी माना निर्लिप्त, निर्मोही, उपराम, बहुत सारी योगी जीवन की निशानियां हैं। अगर योग यथार्थ किया है तो वो निशानियां हमारे प्रैक्टिकल जीवन के अंदर आनी चाहिए। योग नहीं है इसलिए योग लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। बाबा कहता पक्का करो बैठो, लेकिन बैठ करके कब तक करोगे, ये तो आपके जीवन में सब कर्म में योग दिखाई देना चाहिए। योग माना बाबा से जिगरी प्यार, योग माना जिगरी संबंध और उसी से प्राप्ति। कोई भी देहधारी से कोई भी चीज प्राप्त करने की इच्छा अगर है, आप समझ सकते हो बाबा कहेगा तो मेरे बच्चे हो, मेरे बच्चे अप्राप्ति कोई हो ही नहीं सकती उनके पास, न कोई शक्ति की कमी है, न कोई गुण की कमी है, न कोई स्थूल में भी बाबा ने हमें कमी दी है, सब कुछ दिया है, भगवान के हम सब बच्चे हैं और उसकी पालना के अंदर पल रहे हैं, उससे हमारा संबंध है। अगर रियल सचमुच सच्चा संबंध बाबा के साथ किसी का जुड़ा हुआ है तो उसके जीवन में कभी भी असंतुष्टता अप्राप्ति इच्छाएं नहीं रहेंगी, बहुत संकल्प उठेगा हो जाएगा। हम कई बार ये सोचते हैं, विचार करते हैं, अनुभव भी हो रहा है इस समय कि अगर हमारे बहुत शुद्ध संकल्प हैं, पवित्र संकल्प हैं, यज्ञ रक्षक के रूप में संकल्प हैं, यज्ञ हमारा भरपूर रहे, यज्ञ हमारे कमी न पड़े, कोई भी संकल्प करते हो चीज आ जाती है, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, ये भगवान का यज्ञ है और उसके साथ हमारा संबंध है, कोई देहधारी के साथ नहीं है और देहधारी से हम कोई चीज मांगते नहीं है। बाबा ने मांगने से मरना भला सिखाया है, क्यों किसी के आगे हाथ फैलाएंगे, भगवान के बच्चे रायल बच्चे हैं। हर एक समर्पित भाई बहनों को बहुत अंदर का सम्मान रहना चाहिए, कोई भी चीज किसी आत्मा से मुझे नहीं चाहिए, न मान चाहिए, न शान चाहिए, न सीट चाहिए, न पदवी चाहिए। हम योग्य बनेंगे, योग्यताएं हमें सीट देंगे। मैंने तो आज तक नहीं मांगा है, कभी भी नहीं कहा होगा। बाबा सामने बैठा है, मैं बैठा हूँ सामने, टाइप कर रहा हूँ, सब लोग लाइन में जा रहे हैं, टोलियां खा रहे हैं, बुलाया जा रहा है, मैं ऐसे चुपचाप बैठा है। मैं कहीं गया हूँ स्टेज पर, देखा आपने मेरे को? लेकिन मैंने कभी संकल्प नहीं चलाया कि मुझे क्यों नहीं बुलाते, मुझे क्यों नहीं चांस देते। अरे बाबा की जीवन, बाबा के घर में खा रहे हैं, रह रहे हैं, पल रहे हैं, बाबा बुलाएगा तो जरूर जाएंगे, दादी बुलाएगी जाएंगे, अहंकार नहीं है, लेकिन इच्छाएं नहीं है। योगी जीवन में इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की हद की इच्छा नहीं, किसी भी प्रकार की कामना नहीं। जो चाहिए वो सब कुछ प्राप्त कराएगा बाबा। मुझे अनुभव हो रहा है आपको जो चाहिए सब हाजिर हो जाएगा। देने वाला दाता हमारा बाबा है और उसके साथ हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है। एक बार बाबा की डायरेक्ट कनेक्शन की मुरली बताता हूं। मैं चली थी पांडव भवन के अंदर, गवर्नर उस समय चन्ना रेड्डी जी थे। कहानी के रूप में ही बताता हूं, आपको प्रैक्टिकल पता चलेगा। तो चन्ना रेड्डी, वैसे कोई भी गवर्नर, कोई भी पोस्ट वाला रोज नहीं आ सकता घर में, किसी संस्था में रोज नहीं जा सकता है। फिर उसका बाबा से इतना प्यार था, यज्ञ से, मधुबन से, दादियों से, वो शाम होती थी कहता था मुझे पांडव भवन ले चलो। अब सिक्योरिटी उसके आगे कुछ नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी, बहुत बेफिक्र था वो। और वो भी समझते थे ब्रह्मा कुमारी में जाएगा कम से कम शांति से रहेगा, नहीं तो कोई ना कोई काम बताता रहेगा। तो चन्ना रेड्डी जी रोज मधुबन में आते थे और जब आते थे रोज लाइट चली जाती। कभी कभी हाल में बैठे हैं, लाइट चली गई, बात कर रहे हैं, लाइट चली गई। तो एक दिन अपने ऑफिसर्स को बुलाया कि हमारे गवर्नर हाउस में तो कभी लाइट जाती नहीं है, कभी अंधेरा नहीं होता है, यहां पर क्यों होता है? ये तो बाजू में तो है पांडव भवन। तो उनके मुख से निकल गया कि साहब अपने यहां की लाइन जो है ना वो डायरेक्ट लाइन है और यहां की लाइन जो है ना डायरेक्ट नहीं दी जा सकती है, इनडायरेक्ट है, माना अलग से आती है लाइन। जब ये बात कही तो गवर्नर कहता है अरे इतनी बड़ी संस्था है, मैं खुद यहां रोज आता हूं, इनको डायरेक्ट लाइन दिलवा दो, प्रबंध करो। डायरेक्ट लाइन का कितना बड़ा महत्व है। आज हर एक ब्राह्मण बच्चे को बाबा ने डायरेक्ट लाइन दी है, हार्ट लाइन है नहीं है, इनडायरेक्ट तो नहीं है ना किसी की, भाई दादी के थ्रू, भाई के थ्रू, फलाने के थ्रू बाबा के पास जाना है आपको। लेकिन वो लाइन क्लीन क्लियर होनी चाहिए। हॉट लाइन तो दी सबको, सबके पास है, जब चाहिए बाबा से हेलो कर लो, जब चाहिए उससे संबंध जोड़ लो, बात कर लो, रास्ता ढूंढ लो, शक्ति ले लो। मैंने तो कई बार अनुभव किया, विदेश की यात्रा में भी कई जगह अनुभव किया। हॉट लाइन है, किसी से बोलने की जरूरत नहीं। अकेले अकेले फंस गया, मैं दो जगह का अनुभव सुनाता हूं विदेश के। मैं जब न्यूयॉर्क से निकलने लगा, मुझे बहनों ने एरोड्रम पर छोड़ दिया, अकेला ही था मैं, और इतनी इंग्लिश मेरी आती नहीं इतनी, वहां की भाषा तो बिल्कुल समझ नहीं आती। अब जब मैं वहां गया तो हमारी लॉस एंजलिस जाना था, उसने गीता ने क्या किया, मेरे प्रोग्राम चेंज कर दिए। तीन चार जगह कहते होते हुए आओ ना यहां, जा डायरेक्ट आके क्या करोगे, घूमने का स्थान वहां है, वहां है, वहां, तीन चार जगह का प्रोग्राम बना दिया। अब जब मैं गया फ्लाइट के लिए तो बोलने लगे आज बहुत बरसात है न्यूयॉर्क के अंदर, फ्लाइट नहीं आएगी और नहीं जाएगी, 12 घंटे के लिए फ्लाइट नहीं जाएगी। मैं अकेला, न मुझे सेंटर का पता है, न मुझे इंग्लिश इतनी आती है, और न मैं कोई तैयारी से गया हूं कि मैं 12 घंटा वहां बैठ के क्या करूंगा, वो तो चले गए छोड़ने वाले, छोड़ करके। अब मैं कैसे उनको बुलाऊं कि आ जाओ वापस मुझे ले जाओ, और सामान तो दे दिया, सामान भी चला गया अंदर, वो भी बाहर नहीं है। अब मैं बैठा हॉट लाइन, बाबा से बात किया, बाबा अब मुझे क्या करना है। अब वो जो रिसीव करने वाले भाई थे ना, दो कुमार जो हमको रिसीव करने वाले थे एक जगह पर, उन्होंने इंक्वायरी की होगी, उनको पता चल गया कि फ्लाइट है ही नहीं, आ ही नहीं रही 12 घंटे तक। तो उन्होंने एरोड्रम पर खास डायरेक्ट फोन किया, मेरा इधर से बात बाबा से चले है, मैं कोई को कुछ नहीं बोला, चुपचाप एक कुर्सी पर ऐसे जाके बैठ गया, जो होगा देखा जाएगा, मेरा खाना भी नहीं, कुछ सामान नहीं, सिर्फ टिकट और थोड़ा बहुत पैसा था, डॉलर कुछ होंगे, मैं ऐसे बैठा था, एक घंटे में तो मुझे पहुंचना था। इधर मैं बाबा से बात कर रहा हूं, उधर से उस भाई ने वहां पर एयर होस्टेस जो वहां की वो देने वाली थी ना टिकट देने वाली, वो बोर्डिंग पास देने वाली, उनको फोन किया, वहां फोन आ गया कि एक भाई सफेद ड्रेस में बैठा होगा, ये नाम है उसका, उसको आप बुलाओ और उससे मेरी बात करा दो। उसने देखा मैं बैठा था, एक बुलाया मेरे को, मैंने बात किया उससे, तो हिंदी वाले थे सब हमको रिसीव करने वाले, उन्होंने बात किया, हमने कहा क्या करना है मुझे, कहते मैं इनको बोलता हूं कोई भी कहीं की भी फ्लाइट इस साइड से जहां से भी जा रहे हो आपको बिठा दें और मैं रिसीव करूंगा आपको। ठीक है, बोल दो कहां की फ्लाइट है। मेरे को कहीं दूसरी कंट्री की दूसरे स्थान की फ्लाइट की टिकट बोर्डिंग पास मिल गया, सामान कहां गया मुझे पता नहीं, और वो भाई मेरे कहता है कि जहां पर एक है बोर्डिंग पास में लेकर के और आप बैठ जाओ जाकर। अब जब मैं बैठने के लिए गया तो मेरे को तो फ्लाइट का अनुभव था, मुझे क्या पता यहां से पहले ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, ट्रेन के बाद कहीं दूर खड़ा होगा 2-4 किलोमीटर के बाद फ्लाइट आएगी। अब मैं जब जाने लगा तो उसने मुझे ट्रेन दिखाई कि इस पर बैठो, मैं ट्रेन में चढ़ तो गया लेकिन संकल्प चलने लगे मुझे तो फ्लाइट से जाना है, मेरे पास बोर्डिंग पास है। फिर वो ट्रेन एक जगह रुकी जा करके वहां पर, फिर देखा मैंने गेट नंबर वहां लिखा था, फिर मैं वहां से फ्लाइट पकड़ी, अब अकेला ही, कोई सामान नहीं मेरे पास, बस पहुंचा जिस एरोड्रम पर जहां पर उतरे, जहां प्लेन उतरा मैं उतर गया और मैं अकेला बैठा था। मैंने अब क्या कहना बाबा, बाबा से मेरी बातें, कोई इंसान से नहीं, कोई मेरे पास किसी का नंबर नहीं। थोड़ी देर के बाद एक भाई भागा भागा आया दौड़ करके, कहता है मेरी ड्रेस देख करके आजू बाजू में बैठ गया, कहता है आप आबू से आए हैं क्या। मैंने कहा भाई कौन है आप, कहां से आए। कहते मैं सिरोही डिस्ट्रिक्ट का हूं, मेरे बच्चे यहां पढ़ते हैं, मैं आया था और लगा कि आप लगते माउंट आबू के ब्रह्मा कुमारी जी के। मैंने कहा बैठ गया करके कंपनी दिया, कहां जाना है आपको। मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरे को डैलास जाना, इधर जाना, ऐसे बताया। कहता ठीक है मैं आपको पूरी मदद करता हूं। बेचारा सब ढूंढ के इंक्वायरी करके लाया कहां से कौन सी फ्लाइट जाएगी किधर जाएगी, भेज दी। हर जगह पर मुझे बाबा ने ऐसी मदद की, कहीं से भी कोई की न फोन नंबर न कोई जानकारी मेरे पास, लेकिन घबराया नहीं। मेरे पास जो थोड़ा बहुत टोलियां थी उसको भी खिलाया प्यार से, मैंने भी खाई और उसी से मेरे 4-5 घंटे ऐसे निकले। लेकिन मैं जब वहां पहुंचा वो भाई दोनों खड़े थे रिसीव करने, कहते भाई जी आ गए आप बहुत अच्छी तरह से, आपका सामान मेरे पास आ गया है। ऐसे बाबा के साथ हॉट लाइन का कनेक्शन ही योग कहलाता है। हम ये चाहते हैं कि हर एक बाबा का बच्चा अपनी बुद्धि को इतना स्वच्छ बनाओ, इतना क्लीन क्लियर बनाओ, कोई भी इसके अंदर डिस्टरबेंस ना रहे। बाबा हमारा सर्व प्रकार से मदद के लिए बना हुआ है, 1000 भुजाओं वाला हमारे साथ है। इतना प्यार का संबंध, इतना उसकी आज्ञाओं पर चलते चले, उसकी एक एक बात श्रीमत शर्माते, बाबा देखो आपके पीछे पीछे लगा रहेगा मदद करने के लिए। इसको योग कहते हैं। आत्मा हूं परमात्मा की संतान हूं, ठीक है कर लेते हैं अभ्यास। कभी कभी पावरफुल योग करो, विकर्म विनाश हो, संस्कार चेंज हो, जो चलते आ रहे हैं बहुत साल से। बाबा ने परसों नरसों मुरली चलाई, मेरे को बड़ा वंडर लगा, कहता है बच्चों के 50 साल वाले संस्कार भी अभी तक गए नहीं है, 20 साल के हैं, 50 साल के हैं, इतने समय से मुरली सुन रहे हैं, योग कर रहे हैं, इन संस्कार नहीं चेंज हुए, कभी न कभी वो निकल आते हैं बाहर। इसके लिए बाबा कह रहा है चलो योग छोड़कर सेवा में लग जाओ, जब बिजी हो जाओगे ना तो वो संस्कार दब जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, है ना। अव्यक्त मुरली यही तो थी इस बारी की। विधियां बताता है, युक्तियां बाबा सिखाता है। तो अगर मान लो योग में मेहनत लग रही है, नहीं योग लग रहा है, तो अच्छी तरह से बाबा से संबंध जोड़ करके, प्यार भरा संबंध रख करके बाबा की प्यार से सेवाएं करो, मन को अच्छी तरह से बिजी करो। इधर उधर बैठ गए, इससे बात किया, उससे बात किया, परपंच, परचिंतन, परदर्शन, अरे क्या उससे मिलने वाला, टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, सब कुछ वेस्ट करते हैं। मोबाइल में देखो लगे हुए हैं सारा दिन, क्या रखा है पता नहीं क्या मिलता है। चलो कोई जरूरी काम है, 5 मिनट 2 मिनट बात कर लिया, लेकिन कोई कोई तो सारा दिन ऐसे ऐसे करते रहते हैं, व्हाट्सएप चलाएंगे, फलाना चलाएंगे। हम लोगों को भी साधन है, बाबा ने दिए साधन दिए हैं, सेवा के लिए दिए है ना। आज कितने मेल्स आते हैं, कितनी बातें आती हैं, क्लास कराता हूँ, जवाब देता हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, साइंस के साधन यूज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करता हूँ, आपसे ज्यादा यूज कर रहा हूँ, लेकिन कहीं पर भी एक जगह पर भी व्यर्थ क्लिक नहीं होती है। क्यों करेंगे, इतना तो कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए ना। हम योगी लोग हैं, योगी लोगों में क्या मन की कंट्रोलिंग आई है, कंट्रोल है, बोल पर कंट्रोल नहीं है कहीं, जो आया बोल दिया, जब आया बोल दिया, कितने लोगों को डिस्टर्ब कर देते हैं। अगर यथार्थ योग है तो अपनी कर्म इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल आना चाहिए। चेक करो, अंदर अंदर चेक करो कि मैं ये चाहता हूं, मेरा ये शब्द ऐसे निकले, यथार्थ योगी की निशानी है उसके संकल्प, उसके बोल, उसके कर्म अपने नियंत्रण में रहेंगे, कंट्रोल में रहेंगे, अनकंट्रोल नहीं होगा। कभी ये नहीं कहेंगे मैं चाहता तो नहीं था, मेरे से हो गया, मैंने सोचा नहीं था ऐसा हो गया, ये ज्ञान है क्या, योग है। ज्ञानी माना समझदार, समझदार ज्ञानी तू आत्मा जो कुछ करेगी वो बहुत सोच समझ करके करेगी, सोच समझ के बोलेगी, ऐसे नहीं बोल दिया, हो गया, निकल गया, फिर पश्चाताप करते रहो। तो ज्ञान और योग का अगर फाउंडेशन मजबूत है तो उसकी प्रैक्टिकल निशानियां हमारे जीवन से दिखाई देनी चाहिए। हमारे संबंध अच्छे हो जाएंगे, व्यवहार मधुर हो जाएगा, सबके प्रति सम्मान हो जाएगा, सब अपने लगेंगे, हमारा ये बहुत बढ़िया परिवार है, बाबा ने कितना सुंदर संगठन बना के दिया है। मैं समझता हूँ एक एक की अगर हर एक 5 विशेषताएं नोट करके रखो तो कभी भी किसी की कमी और कमजोरी पर ध्यान नहीं जाएगा। है सबके अंदर, कौन ऐसा है जो संपन्न बन गया, कौन कहेगा मैं परफेक्ट हूं, लेकिन मुझे उनकी कमियों को नहीं देखना है। कमियों को सुधारने वाला बाबा बैठा है और कहता मैं कैसे भी सुधार करके ले जाऊंगा। प्यार से सुधर जाओ, ज्ञान योग से सुधर जाओ तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास तो फिर मेरा राइट हैंड है। इसलिए सब ध्यान देना, मुझे किसी को सुधारना नहीं है, बाबा बैठा है, दादियां भी सुधार के नहीं गई, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। हम सब को भी अपनी स्थिति बनानी है, अपने को अच्छा रखना है। अगर कोई कुछ गलत करेगा उसकी सजा उसको अपने आप मिलेगी। सबसे बड़ी सजा तो ये दिखाई देती है उसका योग नहीं लगता, उसको खुशी नहीं रहती, उसका उमंग उत्साह नहीं रखता, उसको परिवार अच्छा नहीं लगता, उसको ये स्थान अच्छा नहीं लगता, ये सजा नहीं तो क्या है। ऐसे सुंदर स्थान पर बाबा ने बिठाया है, इतना निश्चिंत जीवन दी है, इतनी सचमुच सब कुछ दिया है, क्या है आज दुनिया के अंदर हाहाकार है, हाहाकार एक तरफ है और बाबा के बच्चे वाह वाह कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं दी, कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ बाबा के घर में हम सबको मिला है। लेकिन फिर भी इसकी अगर कदर नहीं तो ये बहुत बड़ी सजा है। हम सबको बहुत ध्यान देना, अपनी प्राप्तियों की लिस्ट इमर्ज रखो, क्योंकि जहां प्राप्तियां हैं प्यार है वहां योग सहज है। जिससे प्यार होता है, जिसके साथ संबंध होता है और जहां से सब कुछ मिलता है उसको याद करना नहीं पड़ता, उसकी याद अपने आप आती है। तो बाबा की याद तो हम सबके दिल में बसी हुई है, नैनों में है, हमारे बाबा के सिवाय हमारा और कौन है। इतना जिगरी बाबा 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 अंदर की आवाज रहती है तो मैं समझता हूँ अपनी बहुत भरपूर खुशनुमा खुश मिजाज स्थिति है और अपनी हर कर्मिंद्री पर अपना कंट्रोल है। बहुत अच्छी स्थिति रहती है कोई महिमा करे। उस दिन बाबा ने कहा, और मेरे आगे एक परीक्षा आई, परीक्षा नहीं बताऊंगा क्या आई। उस दिन बाबा ने कहा कोई तुमको माने या न माने, मान दे या न दे, माने या न माने, तुम उसको अपना मीठा भाई अपनी मीठी बहन मानो। बाबा क्या सिखाता है। मैं चक्कर लगा रहा था, मैंने भाइयों को बोला भाई इतना भगवान पढ़ा रहा है, मार मार करके हम लोगों को ठीक करेगा, कोई माने या न माने। आज कोई को मान न दो, देखो दूसरे दिन कितना भड़क जाएगा वो, अरे कैसे रहते हैं कैसे वो कहते हैं। बाबा वो भी सिखाता है मान दो सम्मान दो। आज भी बाबा ने कहा अरे कोई बच्चे बड़े हैं, कोई रायल हैं, कोई आपसे बड़ी पोस्ट वाले बड़ी उम्र वाले हैं, आप कह के बात को सिखाया ना, ये मान देना सिखाया। लेकिन फिर भी कोई ऐसे बात करते हैं, ये राजू फाजू क्या है, ये फलाना क्या है, उसकी बात ऐसे ऐसे शब्द आए मेरे आगे। मैंने कहा ठीक है, माने या न माने, मान दे या न माने, बाबा ने तो कहा तुम सबको अपना भाई मान, तुम अपनी बहन मान। अगर हम सचमुच इस ज्ञान की गहराई में गए हैं ना, तो इन छोटी छोटी बातों में उलझेंगे नहीं। हमारे बड़े हैं, हमारे इंचार्ज हैं, हमको नहीं पूछते हैं, हमको नहीं बात करते हैं, ठीक है, हम अपने रिकॉर्ड को खराब नहीं करेंगे। अगर हमारा रिकॉर्ड अच्छा है तो एक न एक दिन उनको महसूस जरूर होगा। इसलिए कभी भी अपना रिकॉर्ड खराब नहीं करना। रिकॉर्ड पर बहुत मार्क्स होती हैं, पढ़ाई से भी ज्यादा मार्क्स रिकॉर्ड की होती है। स्कूल के अंदर स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखा जाता है, ये गुस्से वाला तो नहीं है, ये कोई छिपाता तो नहीं है, ये बात को चलाता तो नहीं है। अच्छे रिकॉर्ड की बहुत सारी निशानियां हैं, मैं क्लास नहीं करा रहा हूं, आप सब चिंतन करना। अगर मेरा अच्छा रिकॉर्ड है बाबा के घर में, बड़ों के आगे, दादियों के आगे, बाबा के आगे, तो उस रिकॉर्ड के आधार से बाबा मुझे पास कर देगा। भले हमने इतना योग नहीं किया है, इतना ज्ञान नहीं किया है, इतनी सेवाएं बाहर की ज्ञान योग की नहीं की हैं, लेकिन बाबा के घर में हमने अपना रिकॉर्ड अच्छा रखा है, अपने बोलचाल का रिकॉर्ड है, अपनी दृष्टिवृत्ति का रिकॉर्ड है, अपनी अनासक्त भावनाओं का रिकॉर्ड है, बहुत सारा बड़ा रिकॉर्ड है हम लोगों का। कहते हैं देखो कितना अनासक्त है, कितनी इसके पास सेवाएं हैं, लेकिन कभी भी इसके ऊपर चेहरे पर टेंशन नहीं देखा, बड़ा हर्षित रहता है, बड़ा खुश रहता है, बहुत प्यार से सबकी सेवा करता है, रिकॉर्ड है ना ये, इसको कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल अनासक्त भाव से सबकी सेवा करता है। हमारे मधुबन में एक भाई है, हर एक के दिल से उसको दुआ निकलती है, पांडव भवन में चिमन जानते हो, इतना प्यारा चिमन भाई है मेरा। कोई भी बीमार पड़े, बुढ़ा हो बीमार हो, खाना देना हो, हॉस्पिटल जाना हो, उसको रिसीव करना हो, उसकी हर प्रकार की छोटे से छोटी सेवा। जबकि वो उसका जो भाई है एक एमएलए है गुजरात में, बड़ी पोस्ट पर है, उसका भाई एक अमेरिका में, अमेरिका घुमा दिया उसको, वो अमेरिका भी घूम के आया इस साल पिछले साल। लेकिन उतना नम्रचित है, इतना निर्मलचित है, जिससे मिलो अरे भाई इस भाई के जैसा तो कोई यज्ञ में नहीं है, रिकॉर्ड है ना। ऐसा रिकॉर्ड हो कि ये देखो कोई भी सेवा हो, छोटी हो बड़ी हो, कभी इसका मूड खराब नहीं होता है, कभी इसकी स्थिति बिगड़ती नहीं है, कभी कोई इसकी चाहना ही नहीं है, इसकी दृष्टिवृत्ति बड़ी शुद्ध है, पवित्र है, अनासक्त है, इसका रिकॉर्ड रखो। ये रिकॉर्ड बाबा के द्वारा बहुत अच्छी मार्क्स दिला देगा। तो हम सब ज्ञान और योग को अच्छी तरह से गहराई में जाएं। आत्मा परमात्मा ड्रामा घर, चार बातें कल बता रहा था मैं, और इन चारों बातों की अगर गहराई में हम चले गए, उसको हमने अच्छा मनन चिंतन किया, तो हमारा हर प्रकार का फाउंडेशन मजबूत हो जाएगा। योग का आधार भी ज्ञान है, अगर ज्ञान की फाउंडेशन में मजबूती नहीं है, कच्चा है, तो योग भी यथार्थ नहीं होगा। इसलिए जब हमें पहचान मिल गई, बाबा ने ज्ञान दे दिया, आप एक आत्मा हो, आप अजर अमर हो, अविनाशी हो, और आप अकाल तख्त पर निवास करने वाली चैतन्य शक्ति हो, इस ज्ञान को अगर हमने घोट लिया, चिंतन में ले लिया, तो एक तो आत्मिक दृष्टि बन जाएगी, बहुत शुद्ध वृत्तियां हो जाएंगी, और बाबा की याद तो अपने आप नेचुरल आएगी, क्योंकि बाप और बच्चे का समान रूप वही एक योग है, यथार्थ योग है, समानता ही यथार्थ योग है। इसलिए देह भान से डिटैच होकर के अपने आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ, बाबा को सन्मुख देखो और बाबा की सब शक्तियों का अनुभव करो। ये चलते फिरते भी किया जा सकता है, लेकिन जब आप लोगों ने समय दिया है, चार दिन का समय, ये ऐसे ही न चला जाए, बैठे हैं थोड़ा देर योग किया और फिर ऐसे है। इस समय ऐसा होता है ना, ये सुबह के समय में नींद का समय होता है, लेकिन मैं समझता हूँ आप सब अलर्ट होकर के बैठो और अभी हम 10 मिनट आपके साथ हैं, योग करेंगे और फिर शाम को भी आप पावरफुल योग करके
खड़ा आगे है अंतिम समय।
हम सभी अभी दो प्रकार की ड्रिल करेंगे। 15-15 मिनट एक स्थिति में बैठ सकते हैं। सभी पहले अपने अपने अकाल तख्त पर बैठो और इस अकाल तख्त पर अपने चमकते हुए स्वरूप को, लाइट को देखो। शरीर भान अपने आप समाप्त हो जाएगा और जब आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में, इस लाइट के स्वरूप में स्थित होगी तो सामने बाप दादा दिखाई देने लगेंगे। दोनों को कहो, बाबा आज आपको मैं अपने आसन पर बुलाता हूं। कहता ना, अपने दिल में बिठा लो मुझे। दिल ये नहीं, ये दिल मन का, भावनाओं का। तो बहुत प्यार से, दिल से बाबा को कहो, बाबा हम बहुत पवित्र स्वच्छ आत्माएं आपका आवाहन कर रही हैं, आप अपना स्थान छोड़ करके यहां आ जाओ, हमारे बीच में आ जाओ, मैं आपके साथ कंबाइंड होकर उस सुख का अनुभव करना चाहता हूं, उस प्यार का अनुभव करना चाहता हूं। तो ऐसे प्यार से बाबा से रूह रिहान करो और बाबा को, दोनों बिंदी हैं अभी, हैं शरीर नहीं देखना, दो बिंदियां देखो, एक मैं आत्मा बिंदी हूं और दोनों बाप और दादा बिंदी हैं। त्रिमूर्ति होकर के सब बैठो, 15 मिनट के लिए त्रिमूर्ति बन के बैठो, उनके साथ का, उनकी शक्तियों का, पवित्रता का, शांति का, प्यार का, सब सुख आत्मा ले ले। ये साथ में कोई बैठा होता ना तो उसके वाइब्रेशन भी बड़े सुखदायी होते हैं। दादी के पास बैठते थे, उनके अच्छे वाइब्रेशन खींचते, उनसे अपने आप से नहीं मिलता। सिर्फ बैठ जाओ बाजू में, कुछ मांगने की जरूरत नहीं। तो अभी हम सभी अलर्ट होकर के तो बैठे ना, सभी अलर्ट होके बैठो और अपने लाइट के आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के अपने स्वरूप को देखो। मैं एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ, इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूँ, मैं बहुत पवित्र स्वच्छ, और जैसा बाबा वैसी मैं आत्मा, बाप दादा वतन से मेरे बीच आ गए, मेरे आसन पर साथ बैठकर उनकी शक्तियों का अनुभव करो। सभी और थोड़ा अलर्ट होकर के बैठेंगे, जिनको थोड़ी सुस्ती आ रही है। अभी हम सब वतन की महफिल का अनुभव करेंगे। बाबा कई बार कहता है, बच्चे अव्यक्त वतन में आओ, बाबा के साथ पिकनिक करो, गुरियान करो, मिलन मनाओ, शक्तियां लो। संदेशियां तो बीच बीच में चली जाती हैं, उनको दिव्य दृष्टि का वरदान मिला है। हम सब दिव्य बुद्धि के विमान से, दिव्य नेत्र से बाबा के वतन को इमर्ज करें। वो दृश्य इमर्ज करो, कैसे बाबा वतन में एक लाइट के चबूतरे पर बैठे हैं, बाबा के साथ एडवांस पार्टी की आत्माएं भी आई हैं, और मैं आत्मा जाके बाबा के बिल्कुल समीप बैठकर उस महफिल का आनंद ले रही हूं। उनकी स्नेह भरी शक्ति, उनकी सकास, उनका वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करो। सब अव्यक्त वतन के दृश्य को इमर्ज करो। मैं एक लाइट के शरीर में, बहुत चमकीली ड्रेस में, इस शरीर से, इस साकार दुनिया से, इस सूर्य चांद तारा गणों से, दुनिया से भी पार, अपने उस लाइट के वतन में, जहां बाप और दादा अपने आकारी स्वरूप में हम सब का आवाहन कर रहे हैं, बहुत प्यार से कह रहे हैं, आओ मेरे बच्चे, इस वतन की सैर करो, यह आपका अपना निजी वतन, अपना निजी घर है। हम सब ने एक बहुत सुंदर लाइट की ड्रेस, लाइट का शरीर धारण किया हुआ है, और बाबा की दिव्य शक्तियां इस शरीर को, लाइट के शरीर को और भी चमकदार बना रही हैं। मैं आत्मा उनके समान सर्व शक्तियों से संपन्न बनती जा रही हूं। बाबा अपने दिव्य नेत्र से मुझ आत्मा को सर्व वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। इस साकार वतन में भाग्य विधाता बाबा ने हम सबको अपनी पावन गोद में बिठाया है। ज्ञान और योग से मेरा श्रृंगार कर रहा है। मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ जो भगवान ने मेरी सब चिंताएं हर ली। बेफिकर वासा बना दिया। ऐसी श्रेष्ठ पवित्र जीवन बनाई। जिसमें कोई भी गम नहीं, कोई भी चिंता नहीं, कोई भी भय नहीं। जन्म जन्म की भक्ति का फल मिल गया। सभी बाबा के प्यार में समाने का अनुभव करो। संगम की प्राप्तियों को याद करो। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, अप्राप्त नहीं कोई शक्ति, अप्राप्त नहीं कोई गुण। बाबा आपने मुझे अविनाशी खजानों से भरपूर किया। अपना वारिस बना करके सब अधिकार दे दिए। कितनी भाग्यवान आत्मा हूं। जिनके हाथों में भाग्य की रेखा खींचने की कलम मिल गई। अपने साथ साथ अनेक आत्माओं का भाग्य बनाने के निमित्त बना दिया। वाह मेरा भाग्य, वाह वाह बाबा वाह। बड़े स्नेह से बाबा की गोदी में समाने का अनुभव करो। प्यार में खो जाओ।
बड़ी बड़ी अद्भुत तेरे ध्यान में जब खो जाता हूँ सचमुच वो घड़ी बड़ी अद्भुत तेरे ध्यान में जब खो जाता हूँ अंबर के पार बता है तू अंबर के पार बता है तू पर अपने पास ही पाता हूँ देखूं मैं तुझको चिंतन में तेरी याद का दीप जले मन में एक ज्योत जगे इस जीवन में तेरी याद का दीप